हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 2 साल पहले कृषा के जिस एक्सीडेंट की वजह से उसका मिसकैरेज हुआ था, युग उसके पीछे का कारण पता लगाना चाहता था। उसने सीसीटीवी फुटेज देखी तो उसे पता चला कि एक बच्चा उस वक्त एक्सीलरेटर पर टॉय रोबोट चला रहा था और वो कृषा के पैर में आ गया, जिससे वो उलझकर गिर गई और उसका मिसकैरेज हो गया था। ऐसी सिचुएशन में युग भी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई भी बच्चा जानबूझकर ऐसी हरकत नहीं करता है। युग कृषा को उस हालत में देखकर काफी इमोशनल हो रहा था। कृषा उठी और युग को एक अनजान आदमी के बारे में बताया, जिसने उस बच्चे को वो टॉय रोबोट दिया था। कृषा ने फुटेज में उस आदमी का चेहरा दिखाया तो युग के चेहरे के भाव सर्द होने लगे। युग के चेहरे के बदले हुए एक्सप्रेशंस को देखकर कृषा ने हैरानी से पूछा, क्या तुम जानते हो ये आदमी कौन है? ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया से है क्या जो तुमने इसे देखते की पहचान लिया? युग ने कृषा की तरफ देखा और जवाब में कहा, मैं नाम बताऊंगा तो तुम भी जान जाओगी कि यह शख्स कौन है। तुम्हारी मेमोरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्या मैं मिल चुकी हूँ इस इंसान से? वैसे देखकर तो यही लग रहा है कि मैंने इसे पहले भी देखा है। कृषा अपने सिर पर हाथ लगाकर याद करने की कोशिश कर रही थी कि वो शख्स कौन हो सकता है, फिर भी उसे याद नहीं आ रहा था। युग ने गहरी सांस देकर छोड़ी और कृषा की आंखों में देखते हुए कहा, ये तेज सिंह राणावत है जिसकी बेटी को मैंने मारा था, याद है? पहले पड़ाव को पार करने के बाद हम जयपुर में गए थे और वहां एक लड़की मेरे चलते तुम्हें मारना चाहती थी। युग के बताते ही कृषा की आंखों के सामने वो सारे दृश्य घूमने लगे जो तेज सिंह राणावत की हवेली में हुए थे। कैसे पिया ने कृषा के खाने में पॉइजन मिला दिया था और युग ने उसे वही खाना खाने पर मजबूर किया था। उन सबकी आंखों के सामने पिया ने तड़पते हुए दम तोड़ा था। सब याद आते ही कृषा की आंखें नम होने लगी। वहीं युग को समझते देर नहीं लगी कि तेज सिंह ने ऐसा क्यों किया होगा। कृषा ने युग की तरफ देखकर नम आंखों से कहा, लेकिन इसमें मेरी क्या गलती थी जो उसने मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाया? मैंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, शुरुआत उसकी बेटी की तरफ से हुई थी, वो ऐसा कैसे कर सकता है मेरे साथ? बोलते हुए कृषा रोने लगी। युग ने उसे अपने सीने से लगा लिया। युग की आंखें उस वक्त गुस्से से सर्द होने लगी। वो उसी लहजे में बोला, ये अंडरवर्ल्ड की दुनिया है कृष, यहाँ आंख के बदले आंख ही निकाली जाती है, दया और रहम जैसी कोई चीज नहीं होती। मैंने उसकी बेटी को मार दिया तो उसने भी मेरे बच्चे को तुमसे दूर करके उसका बदला लिया है। बदला यहाँ पूरा नहीं हुआ है, उसने मेरी वाइफ को तकलीफ दी है, तो अब बारी उसकी है। युग को इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कृषा से अलग हुआ और वहां से जाने को हुआ तभी कृषा जल्दी से उठी और युग का हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हुआ है, मेरे साथ हुआ है। मुझे भी उतनी ही तकलीफ हुई थी जितनी अब तुम्हें हो रही है। बोलते हुए कृषा कुछ पल के लिए रुकी और फिर युग की आंखों में देखकर सिसकते हुए बोली, उस एक्सीडेंट के बाद डॉक्टर ने बहुत मुश्किल से मेरी जान बचाई थी। कृषा को खोने का ख्याल ही युग को तकलीफ दे रहा था। उसने कृषा को जल्दी से अपने सीने से लगाया और कहा, अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा कृष, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे दादू हमारे अगेंस्ट कुछ भी करे या पूरी दुनिया ही हमारे खिलाफ क्यों ना हो जाए, रहना तो तुम्हें मेरे साथ ही होगा। तो क्या तुम अब मुझ पर गुस्सा नहीं हो? अचानक से कृषा ने मासूमियत से पूछा। उसे लगा इन सब के बीच में युग ने उसे माफ कर दिया होगा। कृषा का सवाल सुनकर युग झट से उसे अलग हुआ और सिर हिलाकर कहा, ये तुम्हें किसने कह दिया कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है? गुस्सा अपनी जगह है और प्यार अपनी जगह। कहा ना, रहना मेरे साथ पड़ेगा, चाहे प्यार से रहो या गुस्से से। मैं जयपुर के लिए निकल रहा हूँ। मैंने कहा ना युग, तुम अकेले नहीं जाओगे, मुझे भी साथ लेकर जाना पड़ेगा, कृषा सख्त लहजे में बोली। युग ने कृषा की बात पर हामी भरी। वैसे भी वो अब किसी पर यकीन नहीं करना चाहता था और अपने पीछे से इस तरह कृषा को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। युग की हाँ कहते ही कृषा के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। उसने जल्दी से कहा, अब तो मुझे कपड़े दे दो ताकि मैं बाहर अच्छे से निकल सकूं। मुझे पता है तुमने मेरा सामान किसी को डोनेट नहीं किया होगा, तुम बहुत पजेसिव हो। कुछ ज्यादा ही अच्छे से नहीं जानती क्या तुम मुझे? युग ने भौहें उठाकर कहा और फिर कृषा का हाथ पकड़कर उसे एक कमरे में लेकर गया। युग ने रूम का दरवाजा खोला तो कृषा देखकर हैरान थी। पूरे कमरे में कृषा और युग के फोटोज लगे हुए थे और कृषा का छोटा से छोटा सामान भी संभालकर तरीके से रखा हुआ था। युग हाथ बांधे पूरे कमरे को देख रहा था। अपना सामान वैसा का वैसा देखकर कृषा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। वो जल्दी से युग के गले लग गई और एक्साइटेड होकर बोली, काश मुझे इस रूम के बारे में पहले पता होता तो मुझे तुम्हारा शर्ट पहनकर नहीं रहना पड़ता। क्यों, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मेरे कपड़े पहनने से? युग ने कृषा से अलग होकर पूछा। कृषा ने ना में सिर हिलाया और थोड़ा हिचकते हुए कहा, दिक्कत तो नहीं है, पर तुम्हारा शर्ट छोटा रह जाता है। तुम्हारी बात अलग है, किसी और के सामने इस तरह के कपड़ों में जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। वेरी गुड, बस ऐसे ही रहना, युग ने जवाब दिया और फिर वार्डरोब में जाकर कृषा के लिए एक सूट निकाला। कृषा ने जल्दी से कपड़े लिए और बाथरूम में चली गई। युग बाहर बैठकर उसके आने का इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर सुकून के भाव थे। युग ने धीरे से बड़बड़ा कर कहा, तुम मुझे तकलीफ भी देती हो तो दिल को सुकून मिलता है कृष, बस शर्त ये है कि तुम्हें मेरे पास रहना होगा। लगता है लोगों को बताने का टाइम आ गया है कि डेविल कौन है। आदित्य सिंघानिया, तुमने अपनी मनमानी बहुत कर ली और मैंने तुम्हें करने दी, क्योंकि मेरी सांसें तुम्हारे पास थी। पहले इस देव सिंह राणावत से तो निपट लूं, बहुत शौक चढ़ा है इसे बदला लेने का। अब इसे पता चलेगा कि बदला लेना किसे कहते हैं। युग ने फिर मलिक को कॉल पर कनेक्ट किया और धीरे से कहा, हम जयपुर जा रहे हैं, अगले एक घंटे में जेट रेडी होना चाहिए। कोई इमरजेंसी है क्या? अपने साथ आदमियों को भी लेना है या फिर? जाने से पहले मलिक सब कुछ कन्फर्म कर रहा था, तभी युग ने उसकी बात बीच में काटते हुए कहा, सिर्फ मैं, कृष और तुम ही जा रहे हैं। जब मामला पर्सनल हो जाता है तो मुझे अपने साथ किसी की जरूरत नहीं होती है, मैं खुद सामने वाले से निपटने के लिए काफी हूँ। मलिक आगे कुछ पूछता उससे पहले युग ने कॉल कट कर दिया। उसके बोलने के लहजे से वो समझ गया था कि बात सच में सीरियस है। युग को पता था कि कृषा को आने में टाइम लगेगा, इसीलिए वो किचन एरिया में गया और जल्दी से उनके लिए कुछ खाने को बनाने लगा। कुछ ही देर में कृषा तैयार होकर आ गई थी। उसने ग्रे कलर का ऑफिस सूट पहना था। कृषा ने अपने बालों का मैसी बन बना रखा था। कृषा बाहर आई तब युग डाइनिंग टेबल पर खाने के साथ बैठा था। तुम्हें पता होता है कि मुझे किस वक्त क्या चाहिए होता है, कृषा ने मुस्कुराकर कहा और युग के पास आकर बैठ गई। लेकिन तुम्हें क्यों नहीं पता होता कि मुझे किस वक्त क्या चाहिए होता है, युग ने कोल्ड वॉइस में कहा। उसकी नजर कृषा के होठों पर थी। कृषा को उसके कहने का मतलब समझ नहीं आया। वो सवालिया नजरों से उसकी तरफ देख रही थी कि तभी युग ने उसे पकड़कर अपने करीब किया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। युग उसे काफी पैशनेटली किस कर रहा था। किस करते हुए युग ने कृषा के बालों को खोल दिया था। युग किस ब्रेक करके गहरी सांसें लेते हुए बोला, ऐसे ज्यादा अच्छी होती हो।
कृषा कोई जवाब दे पाती उससे पहले युग उसे फिर से किस करने लगा। कृषा के लिए ये काफी अनप्रिडिक्टेबल था। एक लंबी किस के बाद युग ने उसे छोड़ दिया और वो तिरछी निगाहों से उसकी तरफ गुस्से में देख रही थी। उसके मन में यही चल रहा था कि कुछ देर पहले युग उसके कपड़ों तक को नहीं छूने दे रहा था और अब उसे उसके करीब आना था। युग को पता चल गया था कि कृषा के मिसकैरेज वाले एक्सीडेंट के पीछे तेज सिंह राणावत का हाथ था और वो उसे संभलने का मौका नहीं देना चाहता था। युग ने तुरंत जयपुर जाकर तेज सिंह से उसके किए का बदला लेने का सोचा। कृषा भी उसके साथ जाना चाहती थी और इस बार युग ने उसे रोका भी नहीं। जाने से पहले कृषा और युग डाइनिंग टेबल पर थे और साथ में खाना खा रहे थे। अचानक युग ने कृषा के होठों पर किस किया था, जिसके बाद कृषा तिरछी निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी। कृषा के लुक को देखकर युग ने कंधे उचकाकर कहा, तुम्हारे इस तरह देखने से कुछ नहीं होगा, अब जब तुम मेरे पास आ गई हो तो ये सब तो होता रहेगा ना, ये तो एक बहुत छोटा सा नॉर्मल किस था, उसमें भी तुम मुझे इस तरह देख रही हो। लेकिन कुछ देर पहले तुमने ही तो कहा था तुमने अभी मुझे माफ नहीं किया है, कोई इंसान गुस्से में किसी को कैसे किस कर सकता है, कृषा ने हैरानी से सिर हिलाकर पूछा। कृषा की सवाल का जवाब देने से पहले युग ने कुछ पल सोचा और फिर बेपरवाही से कहा, क्या प्रॉब्लम है, जब आप सामने वाले इंसान से प्यार करते हो तो उनके बीच कुछ भी हो सकता है, वैसे मैं इस वक्त तुमसे गुस्सा नहीं हूं तो मैंने काफी सॉफ्टली किस किया था, फिर भी तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो, और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें गुस्से में किस करूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस तुम्हें ही तकलीफ हो सकती है। कृषा जानती थी युग से बहस करना बेकार है, क्योंकि वो किसी भी मामले में युग से जीत नहीं सकती थी। कृषा ने उसकी बात का जवाब देते हुए धीरे से कहा, तुमसे बहस करना बेकार है, ऊपर से तुम एक लॉयर भी हो तो मुझे तुम्हारी तरह हर बात का लॉजिक देकर बात करना नहीं आता है। अच्छा, तो तुम्हें याद है कि मैं एक लॉयर हूं, वेरी गुड कृष, वैसे भी तुम्हें मुझसे जुड़ी किसी भी बात को भूलना नहीं है, अब टाइम वेस्ट मत करो, हमें निकलना भी है, युग ने जवाब दिया और फिर अपने हाथों से कृषा को खाना खिलाने लगा। युग भी कृषा को खाते हुए देख रहा था। उसे देखकर युग ने कृषा की आंखों में देखते हुए कहा, तुम बदली क्यों नहीं हो कृष, मुझे लगा था ट्रेनिंग के बाद तुम सख्त हो जाओगी, जैसे सारा है जैसे मैं हूं, हमें इमोशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचता है हमें इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम तो बिल्कुल पहले की तरह हो, ट्रेनिंग के टाइम तुमने बहुत से लोगों की जान ली होगी, क्या तब तुम्हारे हाथ नहीं कांपे? किसी भी तरह की माफिया ट्रेनिंग में क्या कुछ होता था ये युग से बेहतर कोई नहीं जान सकता था। शूटिंग ट्रेनिंग देने के लिए काम करने वाले लोगों का यूज होता था और उनसे अग्रीमेंट करके निशाना लगाना सिखाया जाता था। फिर उन्हीं लोगों की गोली निकालने की ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि जरूरत पड़ने पर अपना इलाज कर सके। कृषा ने युग की बात का कोई जवाब नहीं दिया तो युग आगे बोला, बताओ कृष, क्या मासूम लोगों की जान लेने के टाइम तुम्हारे हाथ एक बार भी नहीं कांपे? नहीं युग, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, कृषा ने हल्का मुस्कुराकर कहा। मैंने दादू को पहले ही मना कर दिया था कि मैं अपने हाथ से किसी की जान नहीं लूंगी। मेरी फिजिकल ट्रेनिंग हुई है और साथ ही ये भी कि खतरा आने पर मुझे वहां से बचकर कैसे निकलना है। मैंने अपनी ट्रेनिंग काफी अच्छे से की है, देखना तुम्हें भी पता चल जाएगा। कृषा की बात सुनकर युग के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल थी। उसने उसी लहजे में कहा, हाँ मैंने बहुत अच्छे से देखा है कि तुम खतरा आने पर कैसे बचकर निकलती हो। कृषा युग के कहने का मतलब समझ रही थी। उसने उसके कंधे पर हल्का सा मारते हुए कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो युग राणा, मैं तुम्हारे विला से निकलने वाली ही थी लेकिन तुम्हें पता चल गया और तुमने सारा को निशाना बनाया, तब मुझे बाहर निकल कर आना पड़ा। युग ने उसकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। खाना खत्म हो जाने के बाद वो दोनों उस फ्लोर से बाहर निकले। सुबह के लगभग 4 बजे के करीब युग और कृषा मलिक के साथ जेट में थे और वहां से वो तेज सिंह राणावत से बदला लेने के लिए निकल रहे थे। कृषा प्राइवेट रूम में सो रही थी जबकि युग मलिक के साथ बाहर था। पहले युग ने इस बारे में मलिक को कुछ नहीं बताया था लेकिन आगे के प्लान के चलते उसने मलिक को सब बताते हुए कहा, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कृष प्रेग्नेंट थी, उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ और सब खत्म हो गया। वो एक्सीडेंट तेज सिंह राणावत की वजह से हुआ था और तेज सिंह राणावत कौन है ये तुमसे छुपा हुआ नहीं है। हाँ जानता हूँ, वो पिछले 2.5 साल से आपको मात देने के चक्कर में था। मैंने काफी बार उसे बहुत से लोगों को बात करते सुना जो आपके दुश्मन थे। अब उसकी अच्छी किस्मत कहूँ या बुरी किस्मत की, किसी ने उसका साथ नहीं दिया, मलिक ने बताया। हाँ उसने अपने बदला ले लिया पर अब बारी मेरी है, युग ने सर्द आवाज में जवाब दिया। युग की आंखों में इमोशंस देखकर मलिक समझ सकता था कि वो तेज सिंह राणावत से बदला लेने के लिए कितना बेचैन हो रहा था। मलिक ने उसकी बात पर हामी भरती हुए कहा, तेज सिंह राणावत सोच भी नहीं पाएगा, उसे ऐसी हौत नसीब होगी। आप जाकर रेस्ट कर सकते हैं, मैं आगे की प्लानिंग कर लूंगा। नहीं मुझे उसे मारना नहीं है, उसे जीना होगा, उसकी सजा मौत नहीं जिंदगी होगी, युग ने इतना ही कहा और उठकर अंदर रूम में चला गया। मलिक हैरानी से उसकी तरफ देख रहा था। युग ने पूरी बात नहीं बताई थी लेकिन मलिक समझ नहीं पा रहा था कि आखिरी युग फिर जयपुर जा ही क्यों रहा है जब उसे तेज सिंह नमावत को मारना ही नहीं है।